ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 64। आप मेरे पीछे इसको दोहराइएगा। तामेव तोषयामास पित्रेणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमे कामै प्रसीदेत यथा तथा। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ताम उसको वैश्या को एव निस्संदेह तोषयामास उसने प्रसन्न करने का प्रयास किया। पित्रयेण अपने पिता की गाड़ी कमाई से प्राप्त अर्थेन धन से यावता यथासंभत ग्राम्यै भौतिक मनहरमै उसके मन को सुहावना लगने वाली कामै इंद्रिय भोग के लिए उपहारों द्वारा प्रसीदेत उसे तुष्ट करना होगा यथा जिससे तथा उस तरह से। इसका अनुवाद इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वैश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वैश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। तात्पर्य विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक शुद्ध व्यक्ति भी वैश्या द्वारा आकृष्ट हो जाने पर उत्तराधिकार में प्राप्त सारा धन खर्च कर देता है। वैश्या का संग इतना निंदनीय है कि वैश्या के साथ सम्मुख की इच्छा से व्यक्ति अपना चरित्र नष्ट कर सकता है, अपना उच्च पद खो सकता है और अपना सारा धन गंवा सकता है। इसीलिए अवैध यौन का पुरजोर निषेध किया गया है। मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी से तुष्ट रहना चाहिए क्योंकि थोड़े से विचलन से ही सर्वनाश हो सकता है। एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को इसका सदैव स्मरण रखना चाहिए। उसे एक पत्नी से सदैव तुष्ट रहना चाहिए और केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके शांत रहना चाहिए, अन्यथा किसी भी क्षण वह अपने उत्तम पद से नीचे गिर सकता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अजामिल है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के नित्य कथा प्रसंग में अब हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पूर्व आपने पंचम स्कंद में जो कि स्थान लीला का वर्णन है व्यासदेव द्वारा और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, उसका वर्णन आपने सुना। षष्ठम स्कंद की जो लीला है उसको पोषण लीला कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने षष्ठम स्कंद को पोषण लीला कहा। पोषण का अर्थ होता है पोषणस्तद अनुग्रहात्। भगवान का जो अनुग्रह है, श्री कृष्ण की जो कृपा है जीवों के ऊपर, श्रीमद् भागवतम में उसको षष्ठम स्कंद में पोषण के अंतर्गत रखा गया है। भक्त की भगवान से प्रार्थना है कि आपका पोषण हमें नित्य मिलता रहे, आपका अनुग्रह है हमें जीवों को हमेशा मिलता रहे। पोषण अगर श्री कृष्ण का जीवों को मिलता रहेगा तो जीव पुष्ट होके भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा और अंततः अपने गंतव्य को यानी कि श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर लेगा। तो प्रार्थना इस प्रकार की है कि पोषण मिलता रहे। तो भगवान की तरफ से भी एक प्रश्न उठाती है, अच्छा बताइए किस प्रकार का पोषण चाहते हैं आप। तो भक्त ने इसको बहुत सुंदर और बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार का पोषण मुझे चाहिए। तो भक्त कह रहे हैं, जैसे आप सबने उदाहरण सुना होगा, जैसे कछुआ अपने अंडों की देखभाल करता है उस प्रकार का पोषण मुझे चाहिए। जगत में देखा गया है कि कछुवी जो होती है वो जल और थल दोनों स्थानों पर रहती है, परंतु अपने जो अंडे हैं वो हमेशा स्थल में जाके देती है, जल में नहीं देती कभी भी। और जल में देने न देने के कारण जब स्थल में अंडे रेत में छुपा देती है और उसके बाद अंडे देने के बाद जल में चली जाती है वापस। और विचित्र बात यह है कि वापस लौट के कभी उन अंडों को देखने के लिए भी नहीं आती। वो अंडे वहीं रेत में पड़े हुए हैं और कछुई जल के अंदर विचरण कर रही है, परंतु उसके चिंतन में है कि मेरे जो अंडे हैं वहां रेत के अंदर पड़े हुए हैं। और उस चिंतन के कारण क्या भगवान ने देखिए इतनी सुंदर सृष्टि की है कि कछुई के उस चिंतन के कारण वो जो रेत में अंडे पड़े हुए हैं वो पुष्ट होते रहते हैं और उनको पोषण मिलता रहता है केवल चिंतन के कारण। और उन पुष्टता के कारण, उस पोषण के कारण उस अंडों में से बच्चे निकल आते हैं बाहर और रेत में चल के दोबारा जल में चले जाते हैं। केवल चिंतन की महिमा है ये। और एक विचित्र बात कि कछुई अंडे देने के बाद जल में चली गई तो जितने उसने अंडे दिए उसमें से जिस अंडे का चिंतन उसको विस्मृत हो जाता है, जो अंडा वो ध्यान नहीं रख पाती, वो अंडा सड़ जाता है, गल जाता है, उसमें से बच्चा उत्पन्न नहीं होता। ये चिंतन की महिमा है। वो जल में विचरण कर रही है, यहां पर अंडे रेत में पड़े हुए हैं, परंतु उसके चिंतन के कारण ही वो अंडे जो है बड़े हो रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं और उनमें से जीव जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है और फिर वो सारे कछुए भी दोबारा से जल में चले जाते हैं। तो भक्त की प्रार्थना ये है कि देखिए हम भी इस संसार के अंदर उस अंडे की तरह पड़े हुए हैं, ठीक है, निश्चेष्ट रूप में पड़े हुए हैं, परंतु आप तो ऐसे हैं और हम निश्चेष्ट हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई चेतना उस समय नहीं है, तो हम आपका चिंतन तो कर नहीं सकते, परंतु आपसे प्रार्थना यह है कि कृपया करके आपका प्यार, आपका दुलार, आपका पोषण हमें हमेशा मिलता रहे, जैसे उस कछुवी के चिंतन द्वारा अपने अंडों को उनका पोषण मिल रहा है। अगर इस प्रकार का पोषण मिलता रहेगा तो हमारी वृद्धि, हमारी जो भागवत भगवान भावना भावित जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो मार्ग है ये पुष्ट होता रहेगा और अंततो गत्वा हम भी श्री कृष्ण के चरण कमल को यानी कि आपको प्राप्त कर लेंगे। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका चिंतन कर पाए, इसलिए चिंतन आपको हमारा करना पड़ेगा। यदि आप भूल गए भगवान से भक्त की प्रार्थना, यदि आप भूल गए तो हमारा इस जगत में कुछ नहीं हो सकता, निश्चित रूप से अधोपतन की तरफ चला जाएगा व्यक्ति। ये जो उदाहरण दिया गया है अपने से, जीव जो है अपने को बहुत तरीके से अपने आप को समझ सकता है कि मेरी स्थिति क्या है और भगवान से हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। पोषणस्तत अनुग्रहात, और पोषण का एक अर्थ और भी बताया गया है, पोषणस्त पुष्टि, पुष्टि का भी अर्थ अनुग्रह और कृपा ही होता है। अनेक आचार्यों ने अपने सिद्धांतों में, मुख्य तौर पे वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांत में पुष्टि मार्ग जो बहुत ही मुख्य मार्ग है, बहुत ही प्रचलित मार्ग है, श्रीमद् भागवतम के पोषण, ये जो छठा स्कंद है, ये जो पुष्टि मार्ग है, ये जो पोषण है, इसको पुष्टि मार्ग कहा है। पुष्टि का अर्थ ही है पोषण, कृपा। तो अब आप एक बात सोचिए कि भगवत कृपा के बिना कौन सा ऐसा जीव है जो अपने अंततो गत्वा अपने वास्तविक लक्ष्य को, श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएगा? कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि सभी आचार्यों ने जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वास्तविकता में, वो सारे के सारे पुष्टि मार्गी हैं, क्योंकि पुष्टि का अर्थ होता है अनुग्रह और कृपा, और बिना कृपा के कभी भी जीव जो है वो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये पोषण लीला षष्ठम स्कंद के अंदर श्रील शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन की है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग से संबंधित, अजामिल एक इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी वेदपाठी कर्मकांडी सदाचारी ब्राह्मण था अपने पिछले जन्म के अंदर, अजामिल होने से पहले। परंतु उसके अंदर एक दोष था, वो दोष ये था कि वो इन कर्मकांड में और सदाचार करने में इतना व्यस्त रहता था कि वो कभी कथा नहीं सुन पाता था, और कथा न सुनने के कारण उसका इतना समय जो है इन सब कामों में लग जाता था, और कथा न सुनने के कारण उसके अंदर ये दोष बना। आप विचार करके देखिए, कथा सुनना इतना महत्वपूर्ण बात है, अगर आप कथा ना सुने तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इतना महत्वपूर्ण है कथा सुनना। तो अब उसको दोष ये लगा कि कथा नहीं सुनता था, इन कार्यों में लगा रहता था। तो लोगों ने उनसे कहा कि भैया तुम इन्हीं कार्यों में लगे रहते हो, कुछ कथा सुना करो। तो गांव में उनके वहां पर एक बार एक साधु आए कथा सुनाने के लिए, व्यास गद्दी पे बैठे हुए थे और पुराणों की कथा सुना रहे थे, महाभारत इत्यादि की। तो जाके बैठ गया, तो प्रसंग आया व्यासदेव की उत्पत्ति का, कि मछली के पेट से जो सत्या थी, सत्यवती, उसका जन्म हुआ, और सत्यवती से पराशर जी ने व्यासदेव की उत्पत्ति की। तो ये जब प्रसंग आया तो बड़ा ठहाका मार के हंसा, बोले वाह ये बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं, मछली के पेट से जन्म हुआ लड़की का, उसके पराशर जी ने भी ऐसी लड़की के साथ विवाह कर लिया, हाँ कन्या का कन्यात्व भी नष्ट नहीं हुआ, बड़े लोग करें तो लीला और हम करें तो पाप, विचित्र बात। जब ऐसा कह दिया तो व्यास आसन पर बैठे साधु और व्यासदेव दोनों का अपमान हो गया, दोनों के प्रति अपराध हुआ, क्योंकि बड़े लोग जो कहते हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, बिना किसी भार के वो बात नहीं कहते कुछ भी। और पुराणों शास्त्रों में जितनी भी कथाएं और जितने भी प्रसंग दिए हुए हैं अक्षर सह सत्य हैं, क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान के द्वारा लिखित हैं। तो जब ठहाका मार के हंसा तो बहुत उसके ऊपर वैष्णव अपराध लग गया, संत अपराध लग गया, और संत अपराध लगने के कारण उसकी ये गति हुई कि अगले जन्म में ब्राह्मण तो बना, कुछ समय तक सदाचार का पालन भी किया, परंतु थोड़े से कुसंग में आते ही उसका पतन हो गया, जरा से कुसंग में आते ही। और कुसंग देखिए इतना डेंजरस, इतना खतरनाक है कि व्यक्ति को कहीं भी पतित कर सकता है, कहीं पर भी पतित कर देगा बिल्कुल। थोड़ा सा मन के अंदर विचलन आया, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि बहुत ध्यान पूर्वक अपने आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई हो, अपने आश्रम में बहुत सतर्क रहकर अपने साधन में लगे रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर मन को आप स्पेस देंगे, जगह देंगे, तो इसका कार्य यही है कि सीधे ये विषयों की तरफ भागेगा। और अजामिल के साथ भी यही हुआ, विषयों की तरफ भागने से व्यक्ति कितना जल्दी कुसंग में और कितना जल्दी पतित होता है और विषय का कितना प्रभाव है, इसका वर्णन जो है प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में दिया हुआ है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप है परीक्षित महाराज से, और उनके प्रश्न करने के बाद कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये उत्तर दिया है, क्या कि विषयी पुरुष जो है उसके जीवन में कभी प्रश्न ही उदय नहीं होता कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसका सारा जीवन जो है वो इन्हीं उलझनों में चला जाता है कि किस प्रकार से कमाना है, किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से संतान का पालन करना है, किस प्रकार से घर कुटुंब देखना है। हजारों बातें कहने की है और हजारों बातें सुनने की है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, निद्रया हियते नक्तम व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रता हियते यक्नक्तम, विषयी जीव की रात्रि जो है वो निद्रा में चली जाती है, इतना आदि हो जाता है सोने का, बहुत अभ्यास हो जाता है सोने का कि कभी कभार कहीं बैठे भी कथा में तो जरा बैठे नींद आ गई, बैठते ही नींद आ जाती है। ये तमोगुण का लक्षण है, जहां पर ज्यादा सात्विकता होगी ना, जहां बहुत सात्विकता होगी वहां पर न व्यक्ति को नींद आएगी और उसका भोजन भी बहुत कम हो जाएगा, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जहां बहुत सात्विकता है वहां पर नींद भी बहुत कम आएगी और भोजन भी व्यक्ति का कम हो जाएगा, और जहां तामसिकता बहुत है वहीं ज्यादा नींद आएगी और व्यक्ति जो है हमेशा सोता रहेगा या हमेशा खाने के लिए सोचेगा। ये तामसिकता के लक्षण है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्व पाप के कारण व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के संस्कार बन जाते हैं कि कथा में भी बैठा हो ना तो भी नींद आएगी। पूर्व पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए, अगर पूर्व पाप है ना व्यक्ति का तो उसको हरि कथा अच्छी नहीं लगती, उसको नींद आएगी बार बार कथा के अंदर। अगर सोचो, अगर नींद इतनी आ रही है तो व्यक्ति कथा क्या सुनेगा बताइए। अगर कीर्तन में, कथा में आपकी महत्व बुद्धि नहीं है तो इसका मतलब देहाशक्ति बहुत ज्यादा है, ये विषय के अंदर आपकी आसक्ति बहुत ज्यादा है। इसलिए साधकों से, जो साधक हैं, साधन में लगे हुए हैं, उनसे बहुत बड़ी प्रार्थना है कि व्यसनों से दूर रहिए बिल्कुल। अगर व्यसन में लगे रहेंगे, साधक अगर कोई है तो उसको व्यसन से दूर रहना चाहिए। व्यसन कई प्रकार के हो सकते हैं, इसका वर्णन आगे होगा। और यदि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने को ही ठगेंगे, अपना तो सत्यानाश कर रहे हैं, दूसरों का भी ठेका ले रखा है सत्यानाश करने का, तो निश्चित रूप से क्या होगा, फिर हम पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे और व्यसन में पूरी तरीके से पड़ जाएंगे। इसलिए व्यसनों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए जो व्यसनों में रहते हैं। आप जानते हो जो व्यक्ति व्यसन में पड़े रहते हैं ना, ये जो चार प्रकार के निषिद्ध कर्म जो हमें शुरुआत में ही बता दिए जाते हैं भगवत कृष्ण भावनामृत में आते ही कि किस प्रकार का नशा नहीं करना, मांस भक्षण नहीं करना, आपको स्त्री संग नहीं करना, आपको जुआ नहीं खेलना, ये सब चीजें। व्यसनों में पड़े हुए व्यक्तियों के साथ आप जरा भी संग करेंगे तो इतने विचित्र और इतने चतुर होते हैं ये लोग कि आपको ही आपका दिमाग घुमा देंगे। कुछ होते हैं ऐसे, किसी के साथ आपका संग हो गया है, कुछ तंबाकू खाने वाले, कुछ गुटखा खाने वाले हैं, कुछ संग हो गया है इनके साथ, तो कहते हैं महाराज आपको क्या पता कितना नशा है, इतना आनंद है इसके अंदर, एक बार लगाओ और बस कहां समाधि लग जाती है पता नहीं लगता। ऐसा आपको कर देंगे बिल्कुल। इसलिए एक जगह कहा भी गया है कि अमली हो के धरे ध्यान। अमली जानते कैसे कहते हैं, नशेड़ी जो नशा करते हैं उनको अमली कहते हैं। अमली हो के धरे ध्यान और ग्रही हो के कथे ज्ञान। एक तो नशा करके फिर उसके बाद ध्यान धर रहा है नाटक, ठीक है, उसके बाद ग्रही होके गृहस्थ में है, उसके बाद ध्यान ज्ञान वैराग्य बखार रहा है बहुत। और तीसरा बोले साधु होके कूटे भग, साधु है और उसके बाद इन व्यसनों में पड़ा हुआ है। तो ये तीनों जो है, अमली होके धरे ध्यान और ग्रही होके कथे ज्ञान और साधु होके कूटे भग, कहे भक्त, ये तीनों ठग, तीनों ठग हैं ये। समझ पा रहे हैं बात को? थोड़ा समझने की बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा हो वो ध्यान नहीं धर सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए करना। क्योंकि अरे होश में आएगा तो करेगा ना भजन, होश में ही नहीं है अपने तो भजन किस प्रकार का करेगा। पहले होश में तो आओ उसके बाद भजन करो, और उसके लिए चेतना की आवश्यकता है, सतर्कता की आवश्यकता है, इसके बिना नहीं होगा। और ग्रही हो के कथे ज्ञान, गृहस्थ आश्रम में है और उसके आप ज्ञान वैराग्य की बात कर रहा है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न है बहुत सुंदर कि व्यासदेव ने इतने पुराणों का, इतनी संहिताओं का, वेदों का वर्णन, इतना सबको लिखित करके रख दिया, इन सबका वर्णन किया, और सारे पुराणों को उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों में बांट दिया, हाँ, परंतु विचार करने वाली बात है कि श्रीमद् भागवतम उन्होंने केवल सुखदेव गोस्वामी को ही क्यों दिया। विचार करने वाली प्रश्न है बहुत बड़ा कि सुखदेव गोस्वामी को ही श्रीमद् भागवतम उन्होंने क्यों पढ़ाया। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि श्रीमद् भागवतम निवृत्ति ग्रंथ है, प्रवृत्ति मार्ग की तरफ नहीं, आपको निवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाने वाला ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार के उत्कृष्ट वैराग्य का वर्णन किया गया है, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति, दुराग्रह नहीं है, बुरा मत मानिएगा बिल्कुल भी, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति व्यासासन पे बैठ के जो वैराग्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंदर दिया गया है, व्यासासन पे बैठ के उतने बड़े वैराग्य का वर्णन नहीं कर सकता। कितना हो कैसा हो गृहस्थ हो, लेकिन क्यों, आप देखिए ज्ञान वैराग्य की इतनी उत्कृष्ट बात है श्रीमद् भागवतम के अंदर, एल गीत है, इतना क्लिष्ट वर्णन है, इतने विषयों का वर्णन है, गृहस्थ बैठकर बताएगा एल गीत कैसे करा जाता है, कैसे बोला जाता है, लोग हंसेंगे और उसके ऊपर क्या बात है, गृहस्थ में है और उसके बाद ज्ञान वैराग्य की बात छाट रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को चुना है व्यासदेव ने, बिल्कुल दुराग्रह नहीं है, जो शास्त्र की बात है मैं उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, बस ये बात है। सुखदेव गोस्वामी इतने उत्कृष्ट चक्र चूड़ामणि व्यक्ति है, विरक्त चूड़ामणि, कि कहीं तो टिकते नहीं है एक जगह पर। आप देखिए इस पृथ्वी का कोई भी पदार्थ वो ग्रहण नहीं करते, हाँ, भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी तक पीते नहीं है, वायु के ऊपर तो रहते हैं वो। और जब बहुत कोई आग्रह कर दे कोई गृहस्थ तो जहां पर, तो उनके घर पे जितनी देर में गौ दुही जाती है सिर्फ उतनी देर के लिए खड़े होते हैं, और दो चार घूंट कभी कभी कभार होता है ऐसा दूध ले लेते हैं, वो भी गाय का दूध, और दूसरी बात नहीं। तो इतना विरक्त चक्र चूड़ामणि व्यक्ति जो परमहंस है, जिसके अंदर इतना वैराग्य है, पूरा भक्ति से लबालब भरा हुआ है, वो ही व्यक्ति वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर सकता है। अन्य के किसी के बस की बात नहीं है, इवन हमारे बस की भी बात नहीं है, तो कही हुई बात कह रहे हैं आपको, वैराग्य तो हमारे अंदर भी नहीं है, वास्तविकता तो ये है। ये परम संहिता है और इसका वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि इत्यादि, सनत कुमार जैसे जो परमहंस चक्र चूड़ामणि व्यक्ति है, वैराग्य शिरोमणि जो है, उनके बस की बात है इनका वर्णन करना। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा हो गई है जो व्यासासन पर बैठने का अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा इसके अधिकारी हम हैं नहीं। हमें तो नीचे बैठ के कथा कहनी चाहिए वास्तविकता में, क्योंकि व्यास देव का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक भी चूक आपसे अगर हो गई शास्त्र कहने में तो निश्चित रूप से इससे व्यास देव की बदनामी हो जाएगी। ये व्यास देव को प्रतिनिधित्व करती है ये व्यास गति, इसलिए यहां बैठकर जो बोलना है वो बहुत ही सटीक और एकदम टू द पॉइंट बात बोलनी चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो साधु अगर ये सब व्यसन में लगा हुआ है, मांस भक्षण में है, थोड़ा बहुत ये गुटखा तंबाकू स्त्री भक्षण भी कर रहा है, ये सब कर रहा है, तो वास्तविकता में साधु नहीं है। फिर साधुओं की बात बहुत सुंदर है, चोरी मिथ्या नारी और बाकी साधु की इच्छा। एक तो चोरी ना करे बिल्कुल भी, मिथ्या ना बोले झूठ ना बोले, और स्त्री संग ना करे। अगर ये तीन काम नहीं कर रहा है साधु, बाकी जितना भी थोड़ा बहुत भजन कर रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तीन काम ना करे बस, चोरी नारी मिथ्या बाकी साधु की इच्छा। जितना भजन बन जाए आपका, थोड़े से थोड़ा जितना भी हो संतुष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी इच्छा बढ़ाते रहना चाहिए कि ज़्यादा से भजन हो, बस ये तीन काम न करें। साधुओं के जीवन में भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है, ये व्यसन जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं। चोरी करना, मिथ्या भाषण, पल पल पे मिथ्या भाषण, और उसके बाद अलक्षित रूप से ये कार्य भी होने लग जाते हैं स्त्री संघ के रूप में। ये अगर होंगे तो निश्चित रूप से वो साधु नहीं है, फिर वो ठग है पूरा का पूरा। व्यासासन पे बैठा कितना वो बखार रहा हो परंतु उसको आप साधु मत मानिए बिल्कुल, क्योंकि लक्षण से पता लगता है व्यक्ति के कितना वैराग्य है उसके अंदर, हाँ कितना भगवत भजन में लगा हुआ है। अगर ये सब है तो समझिए हाँ साधु है, अन्यथा नहीं। तो सारी रात्रि जो है वो निकल जाती है सोने में या फिर विषय भोग में निकल जाती है, इसको थोड़ा समझने की बात है कैसे करना है। और व्यक्ति इतना अभ्यास में हो जाता है सोने के और विषय भोग के कि पूरा जीवन उसका ऐसे निकल जाता है कि तेषाम प्रमत्तम निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। उसको दिख रहा है कि थोड़े समय बाद मृत्यु आ रही है मेरी, परंतु पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाता है। यह है व्यसन में रहने का दुष्परिणाम, तो इससे निकलने की आवश्यकता है। इतना शास्त्र में यहां तक बात कह दी गई है, ग्रहीतेव केशेषु मृत्यु न धर्म आचरेत। मृत्यु ने हमारी चोटी पकड़ रखी है कि कभी भी तुम्हें ग्रस लूंगी, हाँ, और फिर भी व्यक्ति जो है अपने व्यसनों से छूटता नहीं है और अपने विषय भोग में लगा रहता है पूरी तरीके से। तो शुरुआत से ही ये देखने को मिलता है, बचपन से बालापन में खेला खाया, हाँ, और जवानी में हल हाका, और बूढ़ भय तो माला लीनी राम जी थारा भी मन राखा। बचपन से तो ठीक है खेलने खाने में लगे रहे, बड़े हुए तो हल हाकने में, मतलब कि ये काम करने में लगे रहे, अब बूढ़े हुए तो माला लीनी हाथ में, चलो राम जी कोई बात नहीं तुम्हारा भी मन रख लेते हैं, थोड़ा माला फेर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी संतुष्ट हो जाओगे। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। साधक को तो बहुत सतर्क होकर जीवन में चलना चाहिए। आप देखिए दास गोस्वामी का चरित्र, देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी का, बचपन से एक तो महाप्रभु का संग मिल गया, उसके जब वृंदावन आए तो किस प्रकार का भजन कर रहे हैं राधा कुंड पर बैठकर। उनके चरित्र में देखो, पढ़ा है हमने, 1000 बार तो दंडवत करते थे ठाकुर जी को, 2000 बार वैष्णवों को, 300,000 नाम डेली ले रहे हैं, और खाने के रूप में क्या है, सिर्फ 125 ग्राम छाछ। एक भक्त बता रहे थे बहुत अच्छी बात, बोले कि ब्रज में जो रहने की पद्धति है ना वो बहुत विशेष पद्धति है। जैसे साधुगण अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं इतर और कहीं रहकर वृंदावन के अलावा, ठीक है थोड़ा बहुत ऐश्वर्य चलेगा, इधर उधर घूमना भी चलेगा, परंतु ब्रज की जो पद्धति है वो बहुत ही विशेष पद्धति है। इसकी दो बातें हैं, विशेष पद्धति क्या है, एक तो सतत श्री कृष्ण का चिंतन 24 घंटे, और उसके बाद पूर्ण वैराग्य के साथ। अगर कुछ मिला खाने के लिए तो ठीक है, एक माँ एक व्यक्ति बता रहे थे हमें राधा कुंड पर, ऐसे हैं महात्मा, बहुत भक्त साधु हैं अच्छे जो भजन करते हैं और माधुकरी करके भिक्षा मांग के अपना भजन करते हैं। इतना उत्कट वैराग्य है कि जो माधुकरी करके, माधुकरी समझते हैं किसे कहते हैं, भिक्षा में जो अन्न प्राप्त होता है उसको माधुकरी कहते हैं। जो माधुकरी करके जो भी उनको अन्न प्राप्त होता है, 2, 5, 6, 7 रोटी जो भी है, पहले तो परिक्रमा लगाएंगे राधा कुंड की 3-4 बार, उसके बाद जाके, ये सत्य घटना बता रहे हैं आपको, कुंड के तट पे बैठ जाएंगे और वो रोटियां जो है 7-8 जो है कुंड की सीढ़ियों पे रख देंगे और उसके बाद बैठ के अपना नाम करेंगे, करीब समय 1-1.5 लाख माला, ठीक है। इतने में अगर वो रोटियों में से चाहे कौवा ले जाए, चाहे बंदर खा जाए, चाहे मछली खा जाए, कोई भी, उसमें से जो बचेगा वो उठा के पहले राधा कुंड के जल में धोएंगे और फिर उसके बाद पाएंगे। कभी कभार तो जितनी लेकर आए उनमें से कुछ भी मिलता नहीं है, यानी कि उस दिन तो फिर हरी बोल समझ लो कि बिना कुछ खाए भजन करना है। अगर इस प्रकार का उत्कट वैराग्य दिखाएंगे तो चरण कमल की प्राप्ति हो सकती है। ठाकुर जी के इतने सस्ते हैं नहीं वास्तविकता में, बहुत महंगे हैं। वैराग्य के बिना ठाकुर जी प्राप्त होते नहीं है, बिल्कुल नहीं होते। ऐश्वर्य तो ठाकुर जी के पास बहुत है, हम क्या ऐश्वर्य दिखा रहे हैं उनको बताइए। हमारा तो ऐश्वर्य तो बहुत बहुत तुच्छ ऐश्वर्य है उनके सामने। हैं, द्वारका का आप वर्णन पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवतम के अंदर, देखिए कितना ऐश्वर्य ठाकुर जी का है। वैकुंठ का वर्णन देख लीजिए, हाँ गोलोक वृंदावन का वर्णन देख लीजिए। परंतु वही ठाकुर ऐश्वर्य छोड़ के इस ब्रज में माधुर्य के पीछे भाग रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको ऐश्वर्य इतना अच्छा नहीं जितना माधुर्य अच्छा लगता है। भक्त के अंदर जितना वैराग्य है, व्यसन से जितना दूर है, विषय से जितना दूर है, उस भक्त का जितना अंतःकरण कितना शुद्ध हो जाता है, वो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है और भगवान फिर हृदय में आके बैठते हैं। तो इसलिए व्यसनों से दूर रहना और फिर उत्कट भजन करना, ये साधक की निशानी है और ऐसा करना भी चाहिए। अब चेतावनी हमारे लिए क्या दी जा रही है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अजामिल बहुत विद्वान था, सदाचारी था, हाँ गुणों से संपन्न था, कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण था, सारे कार्य करता था, परंतु एक बहुत विनोद की बात है, उसका नाम उनके माता पिता ने रखा था अजामिल। हाँ, तो एक भक्त कह रहे थे, बोले धरो पितु मात नाम अजामिल सांचो कियो। अजामिल का अर्थ होता है अजा माने माया और मिल माने मिल गया, माया से मिल गया वो, अजामिल का अर्थ ये है। तो चेतावनी यहां दी गई है, बिल्कुल सद्गुणों से संपन्न ब्राह्मण होने के बाद भी हमें करना क्या है। चेतावनी ये है कि सर्प डसे या हरि ग्रसे ताहो भले करिमान। देखो आप किसी गली में या फिर किसी रास्ते से अगर आप जा रहे हो और सामने एक बहुत विषधर सर्प खड़ा हुआ है आपके सामने, हाँ, और बिल्कुल तैयार है कि आप थोड़ा निकट पहुंचो और आपको डस ले, और पीछे मुड़कर आप देखें अगर और पीछे जाना चाहें तो पीछे बहुत विषयी लोग खड़े हुए हैं, बहुत व्यसनों से भरे हुए, जिनकी चेतना इतनी दूषित है कि उनके देखने मात्र से व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पीछे, दुर्योधन कंस और मृगारी और शकुनी जैसे लोग पीछे खड़े हुए हैं। तो अब आपको वहां पर निर्णय लेना है कि सर्व के पास जाया जाए कि इन व्यक्तियों के पास जाया जाए, तो किसके पास जाएंगे बताइए। हाँ, चले जाएंगे सांप के पास, इतना है हिम्मत है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पीछे मुड़ जाए, वास्तविकता है ये। लेकिन चेतावनी क्या दी गई है, चेतावनी ये दी गई है कि वो विषयी जन जो पीछे खड़े हुए हैं ना, उनको आप छोड़कर, बिल्कुल उनको इग्नोर करके, ध्यान मत देकर आप सर्प की तरफ जाइए। बड़े विचित्र बात है, यहां तो मरने का सीन आ गया सीधा, अगर ये तो डस लेगा सीधा, कोबरा नाक सामने खड़ा हुआ है, अभी एक डंस मारेगा और व्यक्ति 2 मिनट में चित, आप बोल रहे हो सीधा आप मौत के मुंह में भेज रहे हो, बल्कि वो पीछे लोग खड़े हैं उनके पास। सोचने वाली बात है इसके पीछे, कि पीछे जाने की बजाय आगे क्यों भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि शास्त्र का जो कोट है, बोले ये बताया गया कि दुर्जने शुचि सर्पेशु वरम सर्पो न दुर्जना। अगर दुर्जन लोग खड़े हो और सर्प खड़ा हो तो उनमें से किसका वर करें, किसको अपनाएं? तो दुर्जने शुचि सर्पेशु वरम सर्पो न दुर्जना। सर्प को वर वरण कर लीजिए लेकिन दुर्जन का वरण मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सर्पो दशति कालेशु। सर्प तो ऐसा है, कहीं आप लेटे हुए हो अगर आपका काल नहीं आया तो भी आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको काटेगा नहीं, है कि नहीं? वो तो कभी कभी काटता है जब उसको कभी आप कष्ट पहुंचाएंगे, है ना। परंतु सर्पो दशति कालेशु किंतु दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जन व्यक्ति तो ऐसा है आपकी पद पद पे डसेगा आपको, इतना खतरनाक है दुर्जन व्यक्ति का व्यसन संग करना। हित की दृष्टि से सांप ज्यादा अच्छा है दुर्जनों से। क्यों? क्योंकि दुर्जन व्यक्ति तो पग पग पे आपको डसेगा, सांप एक बार डसेगा आपका काम खत्म। वो तो एक बार विष डालेगा आपके अंदर, परंतु दुर्जन व्यक्ति ऐसे हैं कि हमेशा जब आपके साथ मिलेंगे अपना विष जो है वाणी के द्वारा आपके अंदर उड़ेलते रहेंगे और आपकी चेतना को नष्ट करते रहेंगे। सांप अगर काट ले तो मृत्यु सीधा, ठीक है, और दुर्जन अगर काटे, काटने का अर्थ यह है कि उसका संग करने से जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो 84 लाख से भी बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर इतना खतरनाक है दुर्जनों का संग। सर्प के काटने से शरीर की मृत्यु होती है, परंतु दुर्जन के काटने से आत्मा वैसे तो मरने वाली वस्तु नहीं है परंतु मरी जैसी हो जाती है। मरी जैसी का अर्थ है कि आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किया आपने संग ऐसे लोगों का किया जो दुर्जन है, उन्होंने आपकी चेतना दूषित कर दी, तो चेतना दूषित करने के कारण आप जो है व्यसनों में इन 4 निषिद्ध कार्यों में लग गए, और 4 निषिद्ध कार्यों में लगने के बाद क्या हुआ कि आपका पतन हो गया। तो दुर्जन जो है आपके पतन का कारण है, सर्प फिर भी पतन का कारण नहीं बनेगा लेकिन दुर्जन तो निश्चित रूप से बन जाएगा। सर्पों के दांतों में विष होता है और दुर्जन की वाणी में तो होता ही है, अंग अंग में विष होता है, इतना भयंकर है। तो असत्संग, इसकी भी बहुत चर्चा जो है शास्त्रों में की गई है, जिसको जिससे बच के रहना चाहिए हमेशा। अब देखिए ये अपना कार्य करते कैसे हैं, अगर आप दुर्जनों के साथ रहेंगे और व्यसनों में रहेंगे तो इसका भी वर्णन बताया गया, बहुत सुंदर है। परीक्षित महाराज का जब कलयुग के साथ भेंट हुई है, भागवतम के अंदर वर्णन है, जब वो कुरुजांगल प्रदेश का विचरण कर रहे थे और वहां पर देखा उन्होंने कि एक गाय और बैल को एक मलेच्छ जो है वो मार रहा है, तो उन्होंने सीधा अपनी तलवार खींच ली बाहर कि किस प्रकार से गाय और भैंस को बैल को तुम मार रहे हो। तो कलयुग है वो शरण में आ गया, बोले महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मारिए मत। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को बोला कि तुम हमारे देश की सीमा से बाहर निकल जाओ। कलयुग बोला महाराज कहाँ जाएं, सारी तो सारा क्षेत्र तो आपका ही है, तो आप हमें कोई जगह दीजिए रहने के लिए। परीक्षित महाराज ने उनको 4 जगह दी रहने के लिए। हाँ, एक तो बताया है कि आप तुम जुए में रहो, तुम मांस भक्षण में रहो, तुम नशे में रहो और तुम स्त्री संग में रहो। बोले महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 1-8 जगह और दे दो। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम स्वर्ण में रहो, ठीक है, स्वर्ण में, सोने में रहिए आप। हाँ, तो आप देखिए ये जो 4 व्यसन जो है, निषिद्ध कर्म जो है, इनमें से अगर कोई एक भी आपके अंदर आ जाए तो बाकी जो 3 और ये 4 हैं ये बिना बुलाए आ जाएंगे आपके पास, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके पास ये आते चले जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति व्यसन से बचकर अगर भजन करने में लगा रहे, साधक जो है वो इन 4 चीजों से बचकर साधन में लगा रहे, तो निश्चित रूप से वो कलिकाल में रहता हुआ भी कलिकाल में नहीं है, वो सतयुग में रह रहा है। इनसे बचना बहुत आवश्यक है। थोड़ा जोर लगता है जरूर, क्योंकि ये सब मन से रिलेटेड है, मन से संबंधित है और मन हमारा बहुत चंचल है। सत्संग में रहेंगे तो निश्चित रूप से सारा कार्य हो जाएगा। अब देखिए ये कार्य कैसे करते हैं। अजामिल के साथ क्या हुआ, एक दृश्य ने उसका सारा कार्य खराब कर दिया। हाँ, एक दृश्य जो है उसके अंदर आया, और फिर ऐसे कौन से निषिद्ध कर्म नहीं है ऐसे कौन से पाप कर्म नहीं है जो उसने हजारों हजारों बार न किए हो। मांस भक्षण से लेकर, जुआ खेलने से लेकर, नशा करने से लेकर, स्त्री संघ से लेकर, सारे कार्य उसने हजारों हजारों बार कर दिए, केवल एक जो दृश्य उसने जंगल के अंदर देखा था। तो एक अगर आपके अंदर आया तो बाकी चार ये मेहमान जो है सबकी अपनी आपस में साठ गांठ है, आपस को एक दूसरे को ये बता देते हैं कि भैया मैं तो घुस चुका हूं, तेरी बारी है, फटाफट से तू भी आ जा। ये है इनका तरीका। इतना कहते ना प्रभुपाद जी ने कहा ना, विचित्र बात, इफ यू विल कोऑपरेट अमोंग योर सेल्फ देन आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ, तो इन लोगों ने देखो इस बात को इन लोगों ने बड़ा अच्छा समझा है कि कोऑपरेशन कैसे करना चाहिए है, आपस में गठजोड़ कैसे करना चाहिए। ये इन व्यसनों ने बहुत अच्छा सीखा हुआ है कि भैया हम आपस में गठजोड़ करके रहेंगे तो बहुत अच्छे से व्यक्ति के हृदय में आसानी से घुस जाएंगे। जो आसन श्री भगवान के बैठने के लिए हृदय कमल हमारा बना हुआ है उस पे हम इन षड विकारों को बिठा लेते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं पूरी तरीके से। हाँ, तो देखिए इसको ये कार्य कैसे करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मांस भक्षण का दोष आ जाए, और मांस भक्षण जो है बिना हिंसा के होता नहीं है कभी भी, हिंसा जैसे ही होगी मांस भक्षण व्यक्ति करने लग जाएगा, उसके थोड़े समय बाद ही वो निश्चित रूप से जुए के अंदर भी चला जाएगा। क्योंकि स्वर्ण जो है, जैसा परीक्षित महाराज ने कहा कि कलयुग को कि तुम स्वर्ण में रहो, स्वर्ण का अर्थ वास्तविकता में सोना नहीं होता, स्वर्ण का अर्थ होता है पाप की कमाई। जो पाप से कमाया हुआ पैसा है ना, उसका उसको उस कैटेगरी में रखा गया है स्वर्ण में। तो जो व्यक्ति मांस भक्षण कर रहा है, अब अच्छा कार्य तो है नहीं, मांस भक्षण करने से व्यक्ति की चेतना दूषित होगी और चेतना दूषित होते ही निश्चित रूप से जुआ खेलेगा जाके। अब जुआ खेलेगा तो उसके बाद जुआ खेलने वाले जुआरी आप जानते हो कैसे होते हैं। अगर बचना भी चाहे ना व्यक्ति है, बच नहीं सकता है बिल्कुल। कभी कभार क्या हुआ, जुआ खेलते खेलते व्यक्ति हार गया तो जुआरी जो आसपास के उसके तथाकथित दोस्त हैं बोलते हैं, अरे महाराज काहे परेशान हो रहे हो, हाँ क्यों परेशान हो रहे हो, ये जो पेय है, पेय मतलब दारू शराब, ये थोड़ा सा पी लो, तुम्हारी सारी जो दुख दर्द हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। और अपनी जेब से देकर पिला देते हैं। हाँ, उसके पास वो बोले मेरे पास तो पैसे नहीं, बोले हमारे पास तो है, हम पिला रहे हैं, कभी तुम आगे जीतोगे तो फिर उनसे बोलते थे उस समय हमें, हमने तुम्हें पिलाया था, अब पॉकेट खाली करो अपनी। तो ये है तरीका। देखिए मांस भक्षण से सीधा आप जुए में आए, जुए से आप सीधा शराब में आए, और जब ये सब होगा, अब कोई अच्छा कार्य तो है नहीं, आपकी चेतना दूषित हो चुकी है पूरी तरीके से, तो व्यक्ति सीधा व्यभिचार की तरफ चलता है। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे व्यसन जो है वो आपके जीवन के अंदर आते चले जाएंगे और आपका कार्य जो है वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा बिल्कुल। और एक बात और बोली गई है मांस भक्षण के बारे में, कोई व्यक्ति अगर मांस भक्षण करता है, महाभारत का वर्णन है, महाभारत के अंदर कोट है इसका कि मांस भक्षते यस्मात, मांस भक्षते यस्मात भक्षिष्ये तमप्यहम् एतत् मांसस्य मांसत्वम् मनुबुद्धस्य भारत। जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है और जिस प्राणी का करता है उसके शरीर पर जितने रोए हैं उतनी बार उसको तो पहली बार जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद उतनी बार उसको कटना भी पड़ेगा। ये साधारण जीवों के लिए वैसे बात कही जा रही है, भक्त लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, परंतु फिर भी भागवतम के अंदर इस प्रकार का वर्णन आया है तो मैं आपको इस बात समझा रहा हूं। और मांस भक्षण करने वालों की, ये चारों व्यसन करने वालों की बहुत बुरी गति होती है। तो व्यसनों से दूर रहना प्रथम कर्तव्य है व्यक्ति का, और भक्तों का तो है ही है निश्चित रूप में। व्यसन का अर्थ है हृदय में काम जो है, इच्छा जो है, इसको आपको बस ये जो दिख रहे हैं इनको आपको इसको डाइवर्ट करना है, बस इसका जो ध्यान है वो केंद्रित करना है। अब केंद्रित करेंगे कैसे, इसका भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम के अंदर, इसी में ही आगे आप पढ़ेंगे। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि भक्त की क्या इच्छा है, ठाकुर जी से कैसे पोषण मिलता है, वो कामना जो है आप किस तरफ लगाएं, उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में ही, आगे जब वृत्रासुर की कथा आएगी ना उसमें वर्णन है इसका। क्या करें वृत्रासुर, क्या कह रहे हैं कि भक्तों का जो काम है वो कैसा होता है, भक्तों का वास्तविकता में व्यसन है क्या। हा? तो उन्होंने बोला कि अजात पक्ष, एक सेकंड की मैं आपको, हाँ, अजात पक्ष एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव विषणम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षत्वा। क्या है भक्तों का व्यसन कि अजात पक्ष एव मातरम खगा, जो एक नया नया जो पक्षी का बच्चा जो है वो अभी जन्म लिया है, पंख नहीं निकले हैं, आंखें भी नहीं खोला है, हमेशा अपनी माँ जो पक्षी है उसकी बात जोहता रहता है कि मेरी मैया आएगी और मेरे मुख में दाना डालेगी। तो मतलब कैसा है, पूरी तरीके से अक्षम में है कोई भी कार्य करने में। पहला उदाहरण दिया अजात पक्ष है व मातरम खगा, और दूसरा उदाहरण क्या दिया, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता। अब पहले उदाहरण में सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा सा लगा कि कोई बात पूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि पक्षी का बच्चा थोड़े समय बाद जिसके पंख निकल आएंगे और आंखें भी खुल जाएंगी तो अब मैया की बात नहीं जोहेगा, वो तो पंख फैलाएगा, उड़ेगा और अपना दाना चुगेगा। तो यहां पर शरणागति है वो थोड़ी सी बाधित हो गई है ना। दूसरा उदाहरण दिया कि स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता, कि गैया का जो नवजात बछड़ा है वो भी जंगल में गई हुई जो गाय माता है उसकी बात जोता रहता है कि मेरी मैया आएगी मुझे दूध पिलाएगी, परंतु ये भी थोड़े समय तक के लिए है, जब वो बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो अपने आप घास चर सकता है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, तीसरा उदाहरण दिया प्रियम प्रियेव विषणम, हाँ, कि तीसरा उदाहरण बहुत अच्छा दिया वास्तविकता में, कि एक व्यक्ति जो अपने घर से दूर है, उसकी जो पत्नी है घर में है और उनका जो है चिंतन हमेशा करती रहती है, तो चिंतन जो है जब घर में है तब तो चिंतन है ही, साथ में देख रही है, प्रेम है, परंतु जब बाहर चले गए तब तो प्रेम और ज्यादा बढ़ गया है। बोले इस प्रकार का प्रेम, जितना मेरा आपसे प्रेम है अभी ये और बढ़ता चला जाए आपके चरणों में। इसलिए भक्तों का जो काम है, भक्तों का जो व्यसन है वो ये है कि भगवत चरणारविंद के अलावा किसी प्रकार का कोई चिंतन अगर जीव के, भक्त के, साधक के हृदय में नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपकी साधना सफल हुई। तब साधना सफल मानी जाएगी जब आप सतत जो है श्री कृष्ण का चिंतन करते रहेंगे, चरण कमल का चिंतन करते रहेंगे, अन्यथा अगर कोई कामना हृदय के अंदर आई इसके इतर, तो निश्चित रूप से जो आपका जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, आपको जो सिद्धि प्राप्त होने वाली है उसमें व्यवधान आ जाएगा। इसका उदाहरण बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवतम में छठे चौथे स्कंद के अंदर ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज अपने पूर्व जन्म के अंदर, ब्रह्म वैवर्त की कथा है ये, इतना अच्छा भजन किए, बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का भजन किया, अपने ध्रुव महाराज के पूर्व जन्म की कथा है, इतना उत्कृष्ट भजन किए कि सतत श्री कृष्ण के चिंतन में करते करते उनका पूरा जीवन बीतल गया, बीत गया, केवल 6 महीना रह गया उनके भगवत प्राप्ति में, केवल 6 महीना। इतने में क्या हुआ, जिस जंगल में जहां पर वो भजन करते थे बैठकर, कहीं से एक राजकुमार आया अपनी बहुत सारी रानियों के साथ, नर्तकियों के साथ, बैंड बाजे इतने बहुत सामान के साथ आया वहां पर, और उसने वहां पर नाच गाना शुरू किया। ये इतना ऐश्वर्य देखा जब भरत ध्रुव महाराज ने, तो उनके मन में एक बात आई कि भाई देखो ये भी एक सुख तो है, हा? ये जो इतना देखने को मिल रहा था, कितना आनंद आ रहा है, नर्तकियां नाच रही हैं, पखावज बज रहा है, मृदंग मुरज ढल सब बज रहे हैं, इतना आनंद तो है, ये भी एक सुख तो है। तो इस इच्छा के कारण, ये जो उनके मन में इच्छा आई ना, इस इच्छा के कारण उनकी भगवत प्राप्ति 6 महीने से टल गई, और वही ध्रुव महाराज दोबारा से उत्तानपाद के पुत्र के रूप में आए और फिर वो 6 महीना भजन करने के बाद फिर दोबारा भजन करके वापस गए। तो आप सोचिए इतनी सी इच्छा आई आपके अंत समय में भी, हा? भगवान इतनी स्पष्ट बात कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर कि अंत काले क्षमा एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमे जो श्लोक है कि अंतकाल में जो स्मरण करेगा जिस प्रकार का वैसा प्राप्त करेगा। आप देखो ध्रुव महाराज के हृदय में इच्छा आ गई है तो उनकी 6 महीने से भगवत प्राप्ति टल गई। एक और बहुत सुंदर बात, एक और उदाहरण देता हूं आपको, यही की कथा है। एक साधु थे, सिद्ध साधु थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो हमारे जो स्थान के हमारे आश्रम के जितने भी घड़े घंट हैं ये अपने आप बजने लग जाएंगे, शंख घंट सब बजने लग जाएंगे अपने आप। तो समय आया और उन महात्मा ने शरीर छोड़ दिया, परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि ना घड़ी घंट घड़ियाल कुछ नहीं बजा, कोई शंख कुछ नहीं बजा। अब सारे के सारे सकते में आ गए कि महात्मा तो सिद्ध थे, इनकी बात झूठी कैसे हो गई। तो इतने में क्या हुआ, उनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे वो आए घूमते घामते, उनका नाम खोजी जी था, नाम ही खोजी जी था उनका। तो वो आए, बोले क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे हुआ और आपके गुरुजी ने कहा था कि जब हम शरीर छोड़ देंगे तो इस स्थान के जितने भी घड़े घंट शंख जो है सब बजने लग जाएंगे अपने आप। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोले आप थोड़ा खोज करो, आपका नाम ही खोजी है कि क्यों हुआ ऐसा। बोले अच्छा बताओ, महात्मा जी ने हमारे गुरुजी ने शरीर कहाँ छोड़ा था। तो बोले ये आम का पेड़ है, चबूतरा है, यहीं पर लेटे हुए थे ब्रजरज के अंदर और यहीं पर लेटे लेटे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो भी वहीं जाके बैठे, थोड़ा देर बैठे, उसके बाद लेट गए और ऊपर की तरफ देखने लगे। तो उन्होंने क्या देखा, आम के पेड़ पर एक उनको ना बहुत एक सुंदर मीठा आम पका हुआ दिखाई दिया, डाली पे लगा हुआ, और सब आम तो कच्चे थे, एक आम पका हुआ था। खोजी जी की समझ में आ गई बात कि क्या हुआ है वास्तविकता में। उन्होंने आम को ऊपर चढ़े आम के पेड़ पर और वो आम उतार के लेकर आए और उन्होंने अमनिया किया आम को छील कर उसको और ठाकुर जी को भोग लगाया। तो जैसे ही भोग लगाया, अमनिया करके उसको काटा, उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। हाँ, और वही उनके जो गुरुजी थे वो अब सामने प्रकट होके बोले कि अब मेरा जो ये काटा जो अटका हुआ था उद्धार का, अब ये समाप्त हो चुका है, अब मैं भगवतधाम वापस जा रहा हूँ। तो खोजी जी ने सबको बताया बाद में कि हुआ क्या वास्तविकता में। उन्होंने बोला कि जब गुरुजी लेटे हुए थे अपने अंतिम समय में तो उनकी दृष्टि आम की तरफ गई और उनके मन में आया कि इतना सुंदर ये मीठा आम है, इसको ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। अब भोग लगाने की स्मृति करते करते उनका शरीर छूट गया, तो शरीर छूटा और चिंतन आम में रह गया, तो आम में जाके अटक गए, आम में अटक गए जाकर। और जब खोजी जी ने आम काट के छील कर ठाकुर जी को जैसे ही भोग लगाया तो दिव्य प्रकाश जो है, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई कि ठाकुर जी को भोग लगना था, अब वो भोग लग गया तो उनका उद्धार हो गया, सीधे चले गए। तो कामना जिस प्रकार की आपके हृदय में कहीं भी आ गई जरा सी, तो समझ लीजिए कि वहीं स्टॉप लग जाएगा, वहीं स्टॉप लग जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति इस संसार के अंदर अटक जाता है, इतनी छोटी, कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है ये, इतनी छोटी सी बात है सिर्फ। इसीलिए सतत चिंतन, क्या बोला प्रभुपाद जी ने कि आश्रम में रहे, व्यसन से दूर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता रहे। अगर कीर्तन करता रहेगा, नाम जप करता रहेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा। नारद जी बोल रहे हैं इसको, स्कंद पुराण में वर्णन है। नारद जी कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे भगवान, मैं आपका अनन्य आश्रित भक्त हूं और मैंने आपको केवल और केवल आपके नाम के बल पर आपको प्राप्त किया है, केवल नाम के बल पर आपको मैंने प्राप्त कर लिया है। जो श्लोक आदि पुराण और कली संतरण उपनिषद के अंदर है, हरे नाम हरेर नाम एव की कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, यही श्लोक नारद जी ने स्कंद पुराण के अंदर कहा है। नामेव 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 कीर्तनम, तो केवल नाम के बल पर ही व्यक्ति इतनी सरलता से श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति नाम में जिसको रस आ गया, समझ लीजिए उसका कार्य पूरा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।